एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर हमें बहुत सरल और मासूम सी लगती है,
हाँ,
लेकिन असल में है बेहद जटिल और ताकतवर भी।
हाँ, और ये दुनिया है बच्चों के साहित्य की।
बिल्कुल,
आज हम बात करेंगे किम्बर्ली रेनॉल्ड्स की किताब चिल्ड्रंस लिटरेचर के बारे में।
हाँ, और ये विषय मतलब दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इन कहानियों से जुड़े हैं, है ना?
बिल्कुल, बचपन में पढ़ी हैं, सुनी हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये प्यारी सी लगने वाली किताबें ये सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि हमारे समाज, हमारी सोच और यहां तक कि बचपन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसे कैसे बनाती बिगाड़ती हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
सही का, बहुत सही। अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों की किताबों को बस नैतिक शिक्षा दे दी या थोड़ा मनोरंजन हो गया, बस यही मान के साइड में रख देते हैं।
हाँ, हो गया काम।
लेकिन रेनॉल्ड्स हमें दिखाती हैं कि ये किताबें एक आईने की तरह हैं, जिसमें समाज की मान्यताएं, उसके डर, उसकी उम्मीदें, सब कुछ झलकता है।
अच्छा,
हाँ, ये एक ऐसा मैदान है जहां संस्कृति के बड़े बड़े सवाल आम तय होते हैं।
तो चलिए फिर इसी मैदान में उतरते हैं, देखते हैं कि किम्बर्ली रेनॉल्ड्स हमें बच्चों की किताबों की इस छुपी हुई दुनिया के बारे में क्या बताती हैं।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं लेखिका से, किम्बर्ली रेनॉल्ड्स। ये कोई साधारण एकेडमिक नहीं है, वो न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में बाल साहित्य की प्रोफेसर है, और इस फील्ड में मतलब दुनिया भर में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है।
काफी अनुभव होगा फिर तो।
अरे, 3 दशकों से ज्यादा का।
वाह,
हाँ,
और उनकी खासियत सिर्फ अनुभव ही नहीं है जैसा आप कह रही थीं, वो खास तौर पर 19वीं और 20वीं सदी के बाल साहित्य पर फोकस करती हैं।
हाँ, और उसमें भी वो थोड़ी अलग हटकर, मतलब जो विद्रोही किस्म की कहानियां होती हैं ना,
रेडिकल।
हाँ रेडिकल, और इस पूरी शैली का जो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है उस पर उनकी गहरी नजर है।
उन्हें कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है?
हाँ बिल्कुल, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ब्रदर्स ग्रिम अवार्ड, ये बहुत बड़ा सम्मान है इस क्षेत्र में।
अच्छा, तो ये दिखाता है कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है।
और जो बात उनके नजरिए को खास बनाती है वो ये है कि वो सिर्फ कहानी, प्लॉट, किरदार यहीं तक नहीं रुकती।
तो फिर क्या करती हैं?
वो समाजशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, कल्चरल स्टडीज, इन सबको मिलाकर देखती हैं कि भाई ये बाल साहित्य आखिर काम कैसे करता है, इसका असर क्या होता है।
मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है।
बिल्कुल, वो अकादमिक गहराई और जो आम पाठक की दिलचस्पी है ना, उसके बीच एक पुल बनाती हैं।
ये अच्छी बात है।
और उनकी सोच सिर्फ वेस्टर्न किताबों तक सीमित नहीं, वो इसे ग्लोबल मतलब एक वैश्विक नजरिए से देखती हैं।
ये भी जरूरी है आजकल। तो अब आते हैं किताब पर, चिल्ड्रंस लिटरेचर। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है, इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है?
देखिए, रेनॉल्ड्स का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि बाल साहित्य को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल है। ये कोई मामूली साहित्यिक जॉनर नहीं है, बल्कि एक बेहद जरूरी, पेचीदा और लगातार बदलने वाला कल्चरल स्पेस है।
सांस्कृतिक मैदान जैसा आपने पहले कहा था।
हाँ, ये सिर्फ बच्चों को बहलाने या कुछ सिखाने का जरिया भर नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां समाज अपने बड़े सवालों से जूझता है,
जैसे
जैसे बचपन क्या है, सत्ता कैसे काम करती है, पहचान कैसे बनती है, भविष्य कैसा होना चाहिए, ये सारे बड़े सवाल।
मतलब ये किताबें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक तरह की प्रयोगशालाएं हैं जहां नए आइडियाज टेस्ट होते हैं।
है क्या? और ये इतना जरूरी क्यों है? रेनॉल्ड्स इस आम धारणा को तोड़ती हैं कि बच्चों की किताबें तो बस मासूम और सीधी सादी होती हैं।
जो हम सब सोचते हैं अक्सर।
हाँ, वो दिखाती हैं कि विचारधारा के लेवल पर ये कितनी गहरी हो सकती हैं, आर्ट के नजरिए से कितनी एडवांस्ड हो सकती हैं, और मार्केट में मतलब कमर्शियली इनकी ताकत कितनी ज्यादा है।
हाँ, ये तो है। हैरी पॉटर सोचिए, कितना बड़ा मार्केट है।
एग्जैक्टली।
सुनने में तो ये काफी दिलचस्प लग रहा है। तो किताब हमें कहां से कहां तक ले जाती है, एक जर्नी की तरह?
हाँ बिल्कुल, एक पूरी यात्रा है। शुरुआत होती है इस मुश्किल सवाल से कि भाई हम किस किताब को कहें बच्चों की किताब, क्या क्राइटेरिया है,
ये तो वाकई मुश्किल सवाल
है ना? फिर हम 18वीं सदी में जाते हैं जहां जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे फिलोसोफर्स के विचारों ने इसकी नींव रखी।
लॉक और रूसो, स्कूल में पढ़ा था इनके बारे में।
हाँ, फिर आता है 19वीं सदी का स्वर्ण युग, गोल्डन एज,
जिसमें वो एलिस इन वंडरलैंड जैसी किताबें आईं।
बिल्कुल कल्पना की उड़ान भरने वाली किताबें।
और फिर 20वीं सदी, उसमें क्या क्या कवर होता है?
हाँ, फिर 20वीं और 21वीं सदी में सामाजिक यथार्थवाद, मतलब समाज की सच्ची कड़वी सच्चाइयों को दिखाने वाली किताबें।
अच्छा।
फिर पिक्चर बुक्स यानी चित्र पुस्तकों की क्रांति, टीनेजर्स के लिए यूए लिटरेचर का उभार और आजकल डिजिटल मीडिया का असर।
काफी कुछ कवर किया है मतलब।
हाँ, इन सब पर रेनल्स बारीकी से नजर डालती हैं और उनका मकसद साफ है।
क्या?
वो चाहती हैं कि बाल साहित्य के अध्ययन को कुछ लोगों की हॉबी न समझा जाए, इसे लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज का एक अहम हिस्सा माना जाए।
सही बात है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, आखिर किसी किताब को बच्चों की किताब बनाता क्या है? अगर ये कहानी के टाइप या टॉपिक पर निर्भर नहीं करता तो फिर किस पर?
हाँ, यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होना शुरू होता है।
ओके, रेनॉल्ड्स बताती हैं कि ये कैटेगरी थोड़ी फिसलन भरी है, स्टेबल नहीं है। ये तय होती है किताब के टारगेट ऑडियंस से, यानी बच्चे।
ठीक है, ये तो समझ आता है।
लेकिन बचपन खुद क्या है? ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब समाज इसे बनाता है और ये सोच अलग अलग समय में अलग अलग कल्चर में बदलती रहती है।
अच्छा, मतलब बच्चा कौन है ये सोच ही बदलती रहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
बिल्कुल, और सोचिए बच्चों की किताबें लिखता कौन है?
अडल्ट्स।
छापते कौन है?
अडल्ट्स।
खरीदते कौन है?
ज्यादातर अडल्ट्स ही।
तो यहाँ एक पावर इम्बैलेंस, मतलब शक्ति का असंतुलन साफ दिखता है ना?
हाँ बिल्कुल, बच्चे तो पैसिव रिसीवर जैसे हो गए।
और हमेशा एक खींचतान चलती रहती है कि किताब का मकसद कुछ सिखाना है, डिडैक्टिसिज्म, या सिर्फ मजा देना है, डिलाइट।
ये सिखाने और मजा देने वाली खींचतान तो आज भी दिखती है, हर पेरेंट सोचता है। शुरुआत में इसका क्या असर था? आपने लॉक और रूसो का जिक्र किया था।
हाँ, जॉन लॉक का मानना था कि बच्चे का दिमाग एक टैब्यूला रासा, कोरी स्लेट जैसा होता है।
हाँ हाँ, याद आया।
तो इस सोच ने ऐसी किताबों को बढ़ावा दिया जिनका मेन मकसद बच्चों को ज्ञान और नैतिकता सिखाना था।
ओके, इंस्ट्रक्शन वाली किताबें।
दूसरी तरफ रूसो ने एमएल नाम की किताब में प्राकृतिक बच्चे का विचार दिया।
हाँ, जो मासूम है, प्रकृति के करीब है।
बिल्कुल उल्टा।
हाँ,
उन्होंने शिक्षा पर कम, बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया।
तो क्या उस समय इन दोनों विचारों में सीधी टक्कर देखने को मिलती थी किताबों में?
काफी हद तक। कुछ किताबें पूरी तरह उपदेशात्मक थीं, तो कुछ ने बच्चे की आजादी और कल्पना पर जोर दिया। फिर जॉन न्यूबेरी जैसे पब्लिशर आए।
अच्छा।
उन्होंने बड़ी होशियारी से शिक्षा और मनोरंजन को मिला दिया और बच्चों की किताबों को एक कामयाब बिजनेस बना दिया।
वाह, एंटरप्रेन्योर थे वो भी।
बिल्कुल।
इसके बाद आया स्वर्ण युग, है ना, मध्य 19वीं सदी से शुरुआती 20वीं सदी तक। इसमें क्या खास था?
इस दौर में एक बड़ा बदलाव आया। किताबों का फोकस सीधे सीधे उपदेश देने से हट गया।
तो किस तरफ गया?
कल्पना, फैंटेसी और बच्चे की अपनी अंदरूनी दुनिया का जश्न मनाने की तरफ।
जैसे लुईस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड, वो तो वाकई अजीब किताब लगती है बच्चों के लिए, पर है बड़ी मजेदार। वो तर्क को चुनौती देती है, बड़ों का मजाक उड़ाती है और खेल कूद को अहमियत देती है।
बिल्कुल, एलिस इस बदलाव का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इसी दौर में लड़कों के लिए साहसिक कहानियां भी खूब लिखी गईं।
अच्छा, जैसे?
जैसे आरएल स्टीवेंसन की ट्रेजर आइलैंड।
हाँ।
या जे हेंटी की।
हाँ हाँ, पढ़ी है कुछ।
तो रेनॉल्ड्स बताती हैं कि ये कहानियां अक्सर रोमांचक तो होती थीं, पर साथ ही इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद।
साम्राज्यवाद बच्चों की कहानियों में?
हाँ, और एक खास तरह की मर्दानगी के विचारों को भी बढ़ावा देती थी।
ओह।
ये जानना जरूरी है कि मनोरंजन के पीछे भी अक्सर कोई ना कोई आइडियोलॉजी यानी विचारधारा छुपी होती है।
ये तो सोचने वाली बात है। फिर 20वीं सदी में क्या हुआ वर्ल्ड वॉर्स के बाद?
देखो, 20वीं सदी में समाज बदला तो कहानियां भी बदली, पुराने विक्टोरियन आदर्श वो सब टूटे। एक दूसरा स्वर्ण युग भी आया जिसमें सीएस लुईस, नार्निया वाले।
हाँ, नार्निया।
और टोल्किन, द हॉबिट जैसे लेखकों ने ऐसी जादुई दुनिया रची जहां अच्छाई बुराई बिल्कुल साफ थी।
शायद युद्ध के बाद की दुनिया में लोगों को ऐसी क्लैरिटी चाहिए थी।
हो सकता है, युद्ध के बाद की अनिश्चितता से एक तरह का सुकून पाने के लिए।
लेकिन क्या सिर्फ फैंटेसी ही लिखी जा रही थी या कुछ और भी था?
नहीं नहीं, यहीं पर सामाजिक यथार्थवाद यानी सोशल रियलिज्म का भी जोर बढ़ा।
सोशल रियलिज्म मतलब?
मतलब समाज की असली मुश्किल सच्चाइयां, जूडी ब्लूम जैसे लेखकों ने।
ओह, जूडी ब्लूम।
हाँ, उन्होंने तलाक, गरीबी, नस्लवाद ऐसे मुश्किल और असली मुद्दों पर लिखना शुरू किया जिन पर पहले बच्चों की किताबों में बात करना भी टैबू था।
सही बात है। और रोल्ड डाल उनका क्या?
अरे रोल्ड डाल वो तो खुलकर बड़ों के अधिकार पर सवाल उठाने लगे।
हाँ, उनकी कहानियों में बड़े अक्सर मूर्ख या जालिम होते हैं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि बच्चों का साहित्य कितना बदल रहा था, कितना जरी हो रहा था।
अब जरा तस्वीरों वाली किताबों यानी पिक्चर बुक्स पर आते हैं। आपने कहा था कि ये सिर्फ सचित्र कहानियां नहीं है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा और बताइए।
देखो, रेनॉल्ड्स कहती हैं कि पिक्चर बुक्स एक अलग ही कला है, आर्ट फॉर्म है।
अच्छा।
यहाँ शब्द और चित्र बराबर के पार्टनर होते हैं, वो मिलकर कहानी कहते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
ओके।
इसे समझने के लिए दृश्य साक्षरता यानी विजुअल लिटरेसी जरूरी है।
विजुअल लिटरेसी?
हाँ, मतलब सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं बल्कि तस्वीरों की भाषा को पढ़ना। रंग कैसे इस्तेमाल हुए हैं, रेखाएं कैसी हैं, किरदारों के हाव भाव क्या कह रहे हैं, पन्ने का डिजाइन कैसा है, ये सब मिलकर कैसे कहानी को अर्थ दे रहे हैं, ये समझना।
क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
जरूर। जैसे बीट्रिक्स पॉटर, पीटर आबिट वाली, उन्होंने टेक्स्ट और इमेज को बहुत खूबसूरती से मिलाया।
हाँ, उनकी ड्रॉइंग्स बहुत प्यारी होती हैं।
फिर डॉक्टर सूस, उनकी किताबों में भाषा और तस्वीरों के साथ एक अनोखी चंचल ऊर्जा होती है,
बिल्कुल अलग।
हाँ, बिल्कुल क्रेजी।
और फिर मॉरिस सेंडैक की वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर।
ओह, वो वाली। हाँ,
ये तो एक क्रांति थी। इसने पहली बार एक बच्चे के गुस्से को उससे को इतनी ईमानदारी से दिखाया,
बच्चे का गुस्सा किताब में।
हाँ, और ये भी कि कल्पना, इमेजिनेशन कैसे उसे अपनी भावनाओं से डील करने में मदद करती है।
वाह, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बोल्ड रहा होगा।
बिल्कुल। और आजकल की पोस्ट मॉडर्न पिक्चर बुक तो और भी आबे जाती हैं।
जैसे
एंथनी ब्राउन या डेविड वीजनर जैसे लेखक किताब के फॉर्मेट के साथ ही खेलते हैं, कहानी कहने के पारंपरिक तरीकों को तोड़ते हैं, पाठक को ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और पिक्चर बुक्स के अलावा जॉनर फिक्शन, मतलब खास तरह की कहानियां जैसे फैंटेसी, साइंस फिक्शन, इनका क्या रोल रहा?
इनका भी जबरदस्त विकास हुआ है। फैंटेसी में सोचो, हैरी पॉटर।
हाँ, वो तो फिनोमेनन है।
बिल्कुल, इस सीरीज ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसने कई जॉनर को मिलाया और दोस्ती, बहादुरी के साथ साथ नस्लवाद, मृत्यु, सत्ता जैसे मुश्किल विषयों को भी छुआ।
सही है। और फिर YA, यंग एडल्ट लिटरेचर।
हाँ, फिर आया YA, यानी यंग एडल्ट लिटरेचर का दौर।
ये तो आजकल बहुत पॉपुलर है टीनेजर्स में।
बिल्कुल, इसमें पहचान की तलाश, सोशल जस्टिस, प्यार और भविष्य की चिंताएं।
डिस्टोपियन कहानियां बहुत आती हैं इसमें।
हाँ, अक्सर डिस्टोपियन यानी अंधकारमय भविष्य वाली कहानियों में ये सब मुद्दे केंद्र में होते हैं। ये जॉनर शायद इसलिए इतने कामयाब है क्योंकि ये किशोरों को अपनी उलझनों और दुनिया की मुश्किलों से जूझने के लिए एक सुरक्षित, मेटाफोरिकल यानी रूपक जगह देते हैं जहां उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात समझ रहा है।
एक तरह का कनेक्शन महसूस होता है।
हाँ।
आजकल के दौर में और कौन से बड़े मुद्दे हैं जो बाल साहित्य को प्रभावित कर रहे हैं?
एक बड़ा मुद्दा है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। किताबें अब आसानी से एक देश से दूसरे देश पहुंच जाती हैं। ये अच्छी बात है, इससे अलग अलग संस्कृतियों को समझने का मौका मिलता है।
हाँ, ये तो है।
लेकिन इसका एक खतरा भी है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन।
मतलब
सांस्कृतिक एकरूपता, जहां पश्चिमी, खासकर अंग्रेजी भाषा की किताबों का दबदबा इतना बढ़ जाए कि लोकल कहानियां पीछे रह जाएं।
हाँ, ये तो है। भारत में भी हम देखते हैं कि बाहर की कई किताबें बहुत पॉपुलर हैं, इससे अपनी कहानियों पर असर पड़ता होगा।
बिल्कुल, इसीलिए डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन यानी विविध प्रतिनिधित्व का महत्व और बढ़ जाता है।
डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन?
हाँ, मतलब जरूरी है कि हर बच्चा किताबों में खुद को देख सके, अपनी संस्कृति को, अपने जैसे दिखने वाले या सोचने वाले किरदारों को।
इससे क्या होता है?
इससे उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद मिलती है और दूसरों के प्रति सहानुभूति यानी एम्पैथी विकसित करने में भी।
ये तो बहुत जरूरी है। और डिजिटल दुनिया का क्या असर है? ई बुक्स, एप्स, इंटरैक्टिव कहानियां, क्या ये किताबों को खत्म कर देंगी? ये डर तो बहुत लोगों को है।
रेनॉल्ड्स इसे खतरे की तरह नहीं देखती। वो मानती हैं कि डिजिटल तकनीक बाल साहित्य को बदल रही है, खत्म नहीं कर रही।
अच्छा,
ये तो राहत की बात है। वो कहती हैं कि ये कहानी कहने के नए तरीके खोल रही है, नई संभावनाएं पैदा कर रही है। हाँ, ये पारंपरिक पब्लिशिंग और पढ़ने के तरीकों के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन ये विकास का हिस्सा है, इवोल्यूशन है।
ओके। तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब के विश्लेषण से, कुछ बड़े सबक या थीम्स क्या निकल कर आते हैं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात है सांस्कृतिक शक्ति और विचारधारा। बच्चों की किताबें सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो बच्चों के दिमाग को आकार देती हैं। वो बताती हैं कि दुनिया कैसी है, न्याय क्या है, रिश्ते कैसे होने चाहिए, यू नो,
वैल्यूज देती हैं।
हाँ, रेनॉल्ड्स कहती हैं कि हर बाल साहित्य, चाहे वो कितना भी मासूम लगे, आइडियोलॉजिकल होता है, विचारधारात्मक। मतलब वो दुनिया को देखने का एक खास नजरिया पेश करता है, भले ही वो छिपा हुआ हो। जैसे कौन हीरो बनता है, किसकी बात सुनी जाती है, क्या नॉर्मल माना जाता है।
ये बहुत गहरी बात है। मतलब हर कहानी कुछ ना कुछ सिखा रही है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। अच्छा, दूसरा थीम?
दूसरा है बदलता बचपन। किताबें सिर्फ ये नहीं दिखाती कि समाज बचपन को कैसे देखता है, बल्कि उसे बनाने में भी मदद करती हैं।
अच्छा, कैसे?
हमने देखा ना कैसे बच्चे को पहले छोटा वयस्क माना गया, फिर एक मासूम अलग स्टेज वाला, और अब एक सोचने समझने वाला एक्टिव एजेंट।
हाँ,
ये सारे बदलाव हमें बच्चों की किताबों में दिखते हैं। हम भारत में भी सोच सकते हैं, पंचतंत्र के समय के बच्चे की कल्पना और आज की कहानियों के बच्चे की छवि कितनी अलग है।
सही कहा। तीसरा शायद वही मनोरंजन बनाम निर्देश वाली बहस है।
हाँ, वो तो है ही। ये तनाव हमेशा बना रहता है, क्या किताब सिखाए या बहलाए। रेनॉल्ड्स के मुताबिक सबसे अच्छी किताबें दोनों काम करती हैं,
हाँ,
वो मनोरंजन भी करती हैं और सोचने पर मजबूर भी।
और मुश्किल विषयों को भी संवेदनशीलता से उठाती हैं।
भारत में भी हम देखते हैं कुछ कहानियां सिर्फ नैतिक शिक्षा पर जोर देती हैं, कुछ सिर्फ मस्ती मजाक पर।
हाँ,
संतुलन साधना वाकई एक कला है।
बिल्कुल। मुझे याद है बचपन में पढ़ी पंचतंत्र की कहानियां, अब सोचती हूँ तो उनमें मनोरंजन और निर्देश का कैसा अनोखा बैलेंस था।
हाँ, वो तो है। चौथा थीम क्या होगा?
चौथा है प्रतिनिधित्व और पहचान निर्माण, रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी।
ओके।
किताबें बच्चों को आईना दिखाती हैं। जब बच्चे कहानियों में अपने जैसे किरदार, अपने जैसे परिवार, अपनी संस्कृति देखते हैं,
तो उन्हें अच्छा लगता होगा।
हाँ, उन्हें लगता है कि हाँ, मेरी भी जगह है दुनिया में, मुझे समझा जा रहा है। इसे वैलिडेशन कहते हैं।
वैलिडेशन। और जब वो अपने से अलग लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें सहानुभूति यानी एम्पैथी बढ़ती है।
ये बहुत जरूरी है।
हाँ, इसीलिए जरूरी है कि किताबों में हर तरह के बच्चे देखें, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में तो और भी ज्यादा।
बिल्कुल। और आखिरी पांचवा थीम?
वो है वयस्क मध्यस्थता, अडल्ट मीडिएशन।
मतलब?
मतलब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों तक किताबें पहुंचती कैसे हैं, बीच में कौन है।
पेरेंट्स, टीचर्स?
हाँ, माता पिता, शिक्षक, लाइब्रेरियन, प्रकाशक, ये सब गेटकीपर यानी द्वारपाल की तरह हैं। वही तय करते हैं कि बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे।
ये तो है। भारत में सोचिए, स्कूलों में कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं? क्या बच्चों को अपनी पसंद की किताब चुनने की आज़ादी मिलती है?
हाँ, ये सब बातें बच्चे के पढ़ने के अनुभव को बहुत प्रभावित करती हैं।
ये सारे थीम्स तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो खास तौर पर यादगार हैं, जिन्हें हम निचोड़ कह सकते हैं? कुछ कोट्स या इनसाइट्स?
हाँ, रेनल्स के कुछ विचार बहुत शक्तिशाली हैं। मैं उनके सार के रूप में कुछ साझा करती हूँ। पहला, बाल साहित्य कभी सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं होता, ये हमेशा उन वयस्कों के बारे में भी होता है जो इसे लिखते, प्रकाशित करते, खरीदते और बच्चों तक पहुंचाते हैं।
वो पावर इम्बैलेंस वाली बात फिर से।
ये याद दिलाता है कि बच्चों की दुनिया पर बड़ों का कितना कंट्रोल होता है।
और दूसरा?
दूसरा विचार है, बच्चों के लिए लिखी गई किताबें अक्सर ऐसी बातें कह जाती हैं जो वयस्क साहित्य में सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती,
अच्छा,
जिससे बाल साहित्य सांस्कृतिक चिंताओं और संभावनाओं को ज्यादा आजादी से तलाशने का मंच बन जाता है।
ये दिलचस्प है। मतलब बच्चों की कहानियों में ज्यादा हिम्मत होती है मुश्किल बातें कहने की, या शायद मासूमियत के पर्दे के पीछे कहना आसान होता है?
शायद दोनों। तीसरा विचार क्वालिटी पर जोर देता है। सबसे अच्छा बाल साहित्य युवा पाठकों की समझदारी का सम्मान करता है, साथ ही उनकी उम्र के हिसाब से उनकी जरूरतों और भावनात्मक सच्चाई को भी ध्यान में रखता है।
बैलेंस।
हाँ, मतलब न तो बच्चों को कम आंकना है, न ही उन पर ऐसा बोझ डालना है जिसके लिए वो तैयार ना हो।
सही। और चौथा?
शायद डिजिटल दुनिया के बारे में।
हाँ,
चौथा विचार तकनीक पर एक संतुलित नजरिया देता है। डिजिटल तकनीक बाल साहित्य को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि उसे बदल रही है।
ओके।
ये कहानी कहने के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रही है, जबकि पारंपरिक पब्लिशिंग और पढ़ने के तरीकों को चुनौती दे रही है। ये हमें डरने के बजाय, यू नो, भविष्य के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचने में मदद करता है।
ये सारे विचार तो बहुत काम के हैं।
इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है, जैसे माता पिता या अभिभावकों के लिए?
पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा सबक है कि किताबें चुनते समय सिर्फ अच्छी सीख या मॉरल ऑफ द स्टोरी से आगे देखें।
और क्या देखें?
सोचें कि किताब दुनिया को कैसे दिखा रही है, उसमें कौन शामिल है कौन नहीं, क्या वो किसी खास तरह की सोच को बढ़ावा दे रही है, और बच्चों के साथ सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि पढ़ी हुई बातों पर, तस्वीरों पर चर्चा करें, उनकी विजुअल लिटरेसी बढ़ाएं।
अच्छा।
और हाँ, बच्चों की पसंद का भी सम्मान करें, भले ही आपको वो किताब उतनी पसंद ना आए, पर शायद बच्चे को उसमें कुछ मिल रहा हो।
ये जरूरी है। और शिक्षकों के लिए?
शिक्षक बच्चों को क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना और देखना सिखा सकते हैं। पुरानी क्लासिक किताबों को उनके समय के संदर्भ में रखकर पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं कि उस जमाने के मूल्य क्या थे और आज हम उन्हें कैसे देखते हैं,
ताकि वो आंख बंद करके सब स्वीकार ना करें।
बिल्कुल। और ये भी जरूरी है कि साहित्य के सभी रूपों को महत्व दें, पिक्चर बुक्स, कॉमिक्स, फैंटेसी, न कि सिर्फ गंभीर मानी जाने वाली किताबों को। सब में कुछ ना कुछ सीखने को होता है।
सही है। और हम जैसे आम पाठकों के लिए, जो अब बच्चे नहीं रहे?
अरे, हम सब अपने बचपन की पसंदीदा किताबों को दोबारा देख सकते हैं।
अच्छा, क्यों?
सोच सकते हैं कि उन्होंने हमें जाने अनजाने कैसे प्रभावित किया, कौन से सांस्कृतिक मूल्य सिखाए। ये खुद को और अपनी संस्कृति को समझने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। जैसे मैं अब पंचतंत्र को बिल्कुल अलग नजर से देख पाती हूँ।
हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सबसे अहम बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि बच्चों की कहानियां कभी सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो संस्कृति की ईंटें हैं, वो हमारी पहचान बनाती हैं, और कभी कभी वो विचारों की जंग का मैदान भी होती हैं। बाल साहित्य सचमुच में बहुत गहरा, कलात्मक और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली है।
और मेरे लिए ये बात बहुत अहम है कि अगर आप किसी समाज की अंदरूनी चिंताओं, उसकी डीप एंग्जाइटीज और उसकी सबसे बड़ी उम्मीदों को समझना चाहते हैं,
हाँ,
तो उसकी बच्चों की किताबों को देखिए। ये शायद सबसे ज्यादा रिवीलिंग यानी खुलासा करने वाले तरीकों में से एक है। ये किताबें वाकई हमारे सबसे गहरे ध्यान और सोच विचार की हकदार हैं।
तो अगली बार जब कोई बच्चे की किताब उठाए या अपने बचपन की कोई किताब याद करे, तो उसे सिर्फ पन्नों का ढेर ना समझें। उसे एक खिड़की समझें जो हमें दिखाती है कि हम कौन हैं और हम अपने बच्चों को आने वाली दुनिया के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं।
बिल्कुल। और इसी सोच के साथ अब विदा लेते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।